دیکھتے ہیں تفسیر سورہ اسراء آیت نمبر 1. سورت کی پہلی آیت ہمیں معراج اسراء والمعراج اس قصے کو بیان کرنے والی ہے, اور اس میں جو پہلا لفظ جس سے یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سبحان. اس لفظ سے ہم سب واقف ہیں. اب یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ جب ہم کوئی بہت انیوژول, کوئی بہت بڑی ایسی امیزنگ چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو بیسیکلی یہاں پہ سبحان اللہ ہی کہا گیا, اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال بتایا گیا کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک رات میں. یہ کمال کیوں ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے سبحان کے لفظ کو دیکھیں. سبحان کا لفظ سین با ہا سے ہے, اور پانی میں تیزی سے تیرنا, اوپر اوپر فلوٹ کرنا, جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو تسبیح کا لفظ بھی جب ہم بولتے ہیں تو, اور سبحان کا لفظ بھی, تو یعنی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنا جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا, ٹھیک ہے. تو سبحان کا لفظ ہے نا, ہر عیب ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو آپ نے ابو کر دیا, میں نے کہا نا اوپر اوپر فلوٹ کرنا, اس سے ابو کر دیا. اور اسی وجہ سے یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ کسی اور میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر نقص سے پاک ہو, ہر کمی سے پاک ہو, ہر عیب سے پاک ہو, یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نہ ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں نا کمال کی حد تک, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی خوبیاں ہیں اچھی صفات ہیں ان کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ہیں, یعنی بری اور عیب اور نقص والی صفات کمال کی حد تک ہم ان کو نگیٹ کرتے ہیں, اور خوبیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک ہے اس کی جتنی صفات ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو تمام عمدہ صفات پرفیکشن کی حد تک اس میں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی انسان سخی ہو سکتا ہے لیکن جیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے ویسے نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کمال کی حد تک یہ خوبی ہے. اسی طرح رحم کی خوبی, اسی طرح کرم کی خوبی, اس طرح بخشنے کی خوبی, اور اسی طرح جو بھی نیگیٹو صفات ہیں وہ ان سے پاک ہے, جیسے کمزوری ہے, بڑھاپا ہے, فقر ہے, یا جو بھی اور نیگیٹو چیزیں ہیں, نیند ہے, وہ بھی کمزوری کی ایک علامت ہے, موت ہے, ان سب سے وہ کمال کی حد تک دور ہے, ان سب سے وہ پاک ہے. اسی وجہ سے سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے, بہت بڑا کلمہ ہے, اور اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم اتنی بڑی بات ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ صرف ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ سبحان ہے. اور جو اس دن میں 100 دفعہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی, اس کے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, چاہے اس کے اتنے گناہ ہیں کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ. سمندر کے اوپر دیکھیں آپ کتنی جھاگ ہوتی ہے, جب تو اتنے گناہ بھی ہیں نا تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے نا, تو وہ بھی یہی کلمہ سبحان ربی وبحمدہ, سبحان ربی وبحمدہ, ایسے اس فرشتے بولتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند کلمات, جو محبوب کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ, ان میں بھی ہے. और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक महबूब चार कलिमात है, उनमें भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर उसमें भी ये है। तो हम जब ये बात करते हैं तो ये एक बहुत अजीम कलमा है जिसको समझ के कहना चाहिए। तो अब यहां पे क्या कहा गया कि सुभान है, यानी अभी जब हम ये बात आगे जो बयान होने वाली है, ये इतनी अमेजिंग बात है, इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी बात है। सुभान है वो जात जो अल्लदी जो असरा ले गया, रात के बाद जैसे मैंने आपको बताया ले जाने के लिए आता है, तो रात के वक्त ले गया भी अबदी ही अपने बंदे को, लैलन, लैलन जो है वो नकेरा है, और नकेरा में एक बात किल्लत की भी होती है, एक इसके अंदर माना किल्लत का भी होता है, यानी ये कमी बता रहा है, यानी एक रात, पूरी रात नहीं, रात का भी कुछ हिस्सा, रात के भी कुछ हिस्से में ले गया। और ये कितनी जबरदस्त बात है कि पूरी रात में नहीं ये सफर हुआ, यहां से इसरा जो है ना, पहले ये भी आपको बता दूं कि इसरा जो है ये उस सफर के फर्स्ट पार्ट को कहते हैं, जो कहां से, मिनल मस्जिद अल हराम मिनल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जो पार्ट है इसको इसरा कहते हैं। फिर मस्जिद अक्सा से जो आसमानों तक की सैर है वो मेराज कहलाती है, ऐन रजीम से, और वो ये जमीनी वाली नहीं, वो जो आसमान की तरफ जाना है, जैसे अरूज भी इसी से है ना, ऊपर को जाना, तो वो वाली जो सैर है उसका नाम मेराज, और जो पहली है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक वो इसरा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब ये जो इसरा है और जो मेराज हुई है ये सिर्फ एक रात में हुई है, जबकि ये सफर इतना लंबा था कि 30 दिन रात कोई चलता रहता था उस जमाने में, और इससे भी ऊपर बाज दफा हो जाता था, तो तब जाके मस्जिद अक्सा तक पहुंचते थे, यानी एक महीने की मसाफत आप समझ लें, तब जाके पहुंचते थे। और कहां ये कि एक ही रात में ये सफर तय हो गया, चले भी गए और वापस भी आ गए, जो 2 महीनों की बात बनती है, और एक रात के भी एक हिस्से में, जो कि और भी हैरान कुन बात है कि जब नबी अलैहिस्सलाम वापस पहुंचे तो आपका बिस्तर गर्म था अभी तक, जैसे हमारा बिस्तर गर्म होता है ना, उस वक्त हम सोए होते हैं फिर उठते हैं तो अभी थोड़ी देर गर्म ही रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी अभी गर्म था, सुभान अल्लाह। यानी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से है, वल्लाहु आलम अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया दुनिया में या क्या हुआ हम ये कुछ नहीं जान सकते, मगर इतनी जल्दी, यानी दुनिया में अभी इसका मतलब टाइम वही स्टिल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मस्जिद अक्सा भी गए, फिर क्या क्या वहां पे हुआ, फिर आसमानों पे गए, फिर वहां पे क्या क्या निशानियां देखी, फिर वापस मस्जिद अक्सा आए, फिर वापस मस्जिद हराम आए, इतना लंबा सफर, और मे बी फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, दैट्स इट। आज भी हमारे पास इतनी तेज सवारियां हैं, तब भी ये सफर इतनी 1 मिनट में नहीं हो सकता, ये वापस भी चले गए, वापस भी आ गए, चले भी गए और वापस भी आ गए, और कुंडी अभी तक हिल रही है और बिस्तर अभी तक गर्म है। तो ये बहुत अजीम सफर है, और ये किसने करवाया सफर, अल्लाह ताला ने, इसलिए ये लफ्ज आया सुबहान, पाक है वो जात जिसने ये सफर करवाया, एक पूरी रात में नहीं, रात के भी कुछ हिस्से में। और लफ्ज क्या आया, किसको करवाया, यहां पे आ सकता था अपने नबी को, अपने रसूल को, मुजतबा को, मुस्तफा को, लेकिन लफ्ज क्या आया, बी आबदी ही अपने बंदे को, एक एक लफ्ज यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सुभान का पहले देखा, असरा का देखा, ये कौन सा सफर है, भी अब्दी ही को हम देखेंगे। लैलन का आपको पता चल गया, रात का कुछ हिस्सा। अब अब्द में क्या है, अब्द में इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ा ऑनर है कि रब्बे कायनात कह दे ये मेरा अब्द है। अब्दियत जो है ना वो अल्लाह ताला की सामने सबसे बड़ा जो इंसान का मकाम हो सकता है वो अबदियत का है। और ये तभी होता है जब इंसान कुर्ब की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, बहुत करीब हो जाता है। और यहां पे ये बता दिया गया कि इंसान मेराज पे भी पहुंच जाए ना, और इतना बड़ा ये एक मोजा है समझ ले हो गया, इतना हैरत अंगेज वाकया हो गया जो तारीख इंसानी में ना कभी पहले हुआ ना कभी हो सकता है। ईसा अलैहि सलाम को उठाया गया आसमानों की तरफ, लेकिन उनका बिल्कुल डिफरेंट है और मेराज का वाकया बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आप इसकी तफसीलात में भी देखेंगे। तो उनका जो ऊपर उठाया जाना ना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी और वापस भी आ गए, और वो जो नामुमकिनात में से लगता है, जिसको अकल कहती है कि मान ही नहीं सकते ऐसे कैसे हो सकता है, वो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को करवाया, लेकिन बंदा फिर भी बंदा ही रहा, वो खुदा नहीं बन गया। ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों ने तो उनको खुदा बना दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कुछ नहीं, वो फिर भी अब्द ही है। और अब्दियत का मकाम इतना प्यारा मकाम है, अल्लाह ताला इंसानों को यही देखना चाहता है कि वो उसके अब्दे कामिल बन जाए, मुकम्मल गुलामी में आ जाए। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है कि कैसे वो अल्लाह ताला के अब्द बन के उन्होंने दिखाया। और जो अल्लाह ताला का अब्दे कामिल बन जाता है, फिर अल्लाह ताला के उसके ऊपर देखें किस तरह से करम होता है, किस तरह अल्लाह ताला उसको अपनी निशानियां दिखाता है। और ये इसलिए इतना बड़ा मकाम है, ऐसे समझ लें कि जैसे आपको मैं ऐसे दुनिया की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए देती हूँ, वरना इसका आप रियलिटी से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रख सकते, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। मसलन आपको कोई कहे कि मैं व्हाइट हाउस में जॉब करता हूँ, अब ना वो वहां पे कुछ भी जॉब करता हो, इतना उसका कह देना ही ना कि मैं व्हाइट हाउस में जॉब करता हूँ, मैं यूएन में जॉब करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़े इस तरह इदारे का नाम ले या बहुत बड़ी जगह का नाम ले, तो कितना आप इससे मुतासर हो जाते हैं। इसी तरह कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन जहानों के रब का गुलाम हो, इससे बड़ी सआदत और कुछ नहीं हो सकती इंसान के लिए, बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ा मकाम है ये इंसान के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब्द का लफ्ज यहाँ पे बयान फरमाया, नबी का भी नहीं, रसूल का भी नहीं, ये आला तरीन मकाम है। तो इसका ही, इस अबदियत का अमली इजहार तो पूरी जिंदगी में आप अल्लाह ताला की इताअत करके करते हैं, यानी आप अगर अल्लाह ताला के अब्द बनना चाहते हैं ना, पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के आगे झुके रहने, ये अबदियत है। और इसको सिंबॉलिकली, इसको कैसे इजहार हम कैसे करते हैं, सजदा करके, जिसमें इंसान अपने जिस्म का सबसे जो इज्जत वाला मकाम है, उसकी पेशानी है, उसका माथा है, उसको जमीन के ऊपर रख देता है, सबसे नीचे, जमीन से नीचे तो कोई चीज नहीं, उसको जमीन में रोल देता है, अपनी अब्दियत का इजहार करता है कि मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ तेरा गुलाम। और इंसान इस हालत में जब होता है तो अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। तो सजदा अब्दियत की इंतहा है, इसलिए अल्लाह ताला के अब्द होना बहुत बड़ा मकाम है। और अगली सूरत में भी अल्लाह ताला ने अपने अब्द कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज बयान किया। तो अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला वो जात है जो एक ही रात में ले गया अपने बंदे को, अपने बंदे को कहा वे आबदी ही, अपने बंदे को, सिर्फ बंदा नहीं, बहुत सारे लोग किसी और के बंदे बन जाते, कोई दुनिया का बंदा है, कोई माल का बंदा है, कोई ओहदों का बंदा है, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा है। तो अपने बंदे को ले गया, इसमें मोहब्बत भी है, इसके अंदर एक ताल्लुक की बात भी है, इसमें कुर्ब की बात भी है, और इसमें झलकती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कि कैसी होगी आपकी जिंदगी जो अब्दियत वाली जिंदगी है। जितना अल्लाह ताला के आगे झुकता जाता है इंसान, उतना ही अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। आबद में गुलामी है ना, बंदगी है ना, अल्लाह का गुलाम बनने में इंसान की शान है, इंसान का ऑनर है। इसलिए दुआ मांगे अल्लाह ताला हमें अपनी बंदियां बना ले, अल्लाह अपने बंदों में शामिल फरमा ले जिनका उससे ताल्लुक हो, जो उसके आगे झुकने वाले हो। तो ये बात बता के असल में मक्की सूरत है, तो कुफारे मक्का को भी वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हें पता नहीं जिस हस्ती की तुम मुखालफत कर रहे हो वो अल्लाह के नजदीक क्या मकाम रखती है। तुम उनके साथ ये सलूक कर रहे हो और देखो अल्लाह ताला के हाँ उनका कितना बुलंद मर्तबा है। ये अल्लाह ताला उनको अपनी निशानियां दिखाने के लिए आसमानों की सैर करा दी, और जब एक इंसान मुखालफतों में घिरा हुआ है, उनके साथ वो सलूक हो रहे थे उस वक्त कि मक्की जिंदगी का सबसे शदीद तरीन दौर था, हर तरफ से ठुकराया जा रहा था, हर तरफ से रिजेक्शन, इवन ताइफ गए तो वहां से भी रिजेक्शन और बुरी तरह रिजेक्शन। तो उस वक्त इंसान सोचता है कि जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उनकी कदर तुमने नहीं की मगर रब्बे कायनात के हाँ उनकी कितनी कदरों मंजिलत है इसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस हस्ती की मुखालफत कर रहे हो। और आज तक भी उनकी मुखालफत में बहुत सारे इंसान लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए, कभी किताबें लिखते हैं, कभी कार्टून बनाते हैं, कभी किसी तरह ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसे बयानात देते हैं, मगर जिसकी शान इतनी बुलंद हो कि रब्बे कायनात उनको अपने पास बुला ले, जो किसी इंसान को कभी नसीब नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, उनको तो उनके बारे में बात करना तो ऐसे ही है कि जो कोई सूरज की तरफ कोई थूकेगा भी तो अपने ऊपर ही थूक पड़ेगा। लोग जानते नहीं, इंसानियत जानती नहीं कि वो हस्ती है कौन और अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम क्या है। तो असल चीज इंसान की जो कदर होती है ना, वो ही है जो अल्लाह के यहाँ उसकी कदर होती है। इंसानों में हमारी चाहे ना कदरी हो रही हो, इंसानों में चाहे आपको जुटलाया जा रहा हो, आप कोई मुखालफत की जा रही हो, आपके दुश्मन बन गए हो, लेकिन अगर अल्लाह के हाँ आपका मकाम है तो कोई फिक्र की बात नहीं। यही बहुत बड़ी बात है कि आप अल्लाह के अब्द बन जाए, अल्लाह की बंदियां बन जाए। तो ये इतना बड़ा मर्तबा है कि फिर कोई परवाह करने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन मेरा कितना बड़ा मुखालिफ है। अब ये जो सैर थी ये इतना बड़ा फितना बन गई थी कुफारे मक्का के लिए, इसलिए कि वो को तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जाए, जो ये कह रहे हैं वो गए और फिर वहां से सैर करके आए और ये आके बयान कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। उनके लिए यही बात बहुत बड़ा फितना बन गई थी। और ज्यादा मुखालफत में तुल गए, अब उनके पास एक शोशा आ गया। ये देखो, ये तो अपने ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं वो सफर जो इतना लंबा है वो कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी में, ये एक रात में ही गए और वापस भी आ गए। देखो देखो लोगों, और अल्लाह ताला ने इसको एक आजमाइश बना दिया उनके लिए। और आज तक भी बाज लोग ये कहते हैं कि ये वाकया जो है ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, हालांकि ये वाकया बेदारी में और बेमा जिस्म के और रूह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफर तय किया। इसी वजह से तो ये इतना हैरान कुन है कि इसलिए सुबहान का लफ्ज आया, वरना अगर ये ख्वाब की बात होती तो आप ये सोचें कि मैं अगर आपको कहूं कि मैं आज रात ख्वाब में चांद पे गई थी तो कोई इसमें हुई मसले की बात तो नहीं, आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे, इसलिए कि ख्वाब में कोई कहीं चांद जो छोड़ें, अगर मैं कहूं कि मैं आसमानों की सैर करके आई, मैं जन्नत से होके आई, आज मैंने ख्वाब में जन्नत देखी है, मैं वहां पे जा रही थी, मैं ऐसे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब कोई कहे कि मैं इस जिस्म के साथ गया हूं, तब प्रॉब्लम है ना। आप वो कोई इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि कोई कहे उनको कि ख्वाब में मैं गया और वो उसकी मुखालफत शुरू कर दे। तो ये उनका मुखालफत करना ये एक पहली इस चीज की साइन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं ख्वाब में गया, बल्कि ये फरमाया था मैं इस जिस्म के साथ गया। इसीलिए तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी इस बात का कौन एतबार करेगा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सिद्दीक, जो आपकी उम्मत का सिद्दीक है वो आपकी इस बात की तस्दीक करेंगे। इसका साफ मतलब पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। इसी तरह यहाँ पे सुबहान का लफ्ज इस चीज का साइन है कि ये ख्वाब नहीं था। ख्वाब में को बहुत कोई हैरत अंगेज बात थोड़ी है, ये तो एक बहुत सुपर नेचुरल एक वाकया था, सुपर नेचुरल वाकया था, जिसलिए सुबहान का लफ्ज आया। जैसे आप अमेजिंग कोई चीज देखें तो आप कहें सुबहान अल्लाह, ऐसे हो गया। तो ये रिवायत तकरीबन 30 के करीब रावियों से अहादीस में आई है, और बेशतर इनमें बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायात आई हैं। तो थोड़ा सा इस वाक्य को देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प वाक्या है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और रात के एक हिस्से में ले जाया गया, और उस जगह मस्जिद अक्सा वो जगह है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे तो इराक से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो जब उनको निकाल दिया गया तो वो माइग्रेट करके फलस्तीन आ गए थे। और ये जगह जो मस्जिद अक्सा की जगह है, ये बहुत सारे अंबिया का मरकज रही है। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को वहां पे जमा किया। और दूसरी बात ये कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लदी बारकना हौलहू, ये वो जगह है मस्जिद अक्सा की जिसको बरकत दी हमने, ना सिर्फ इस जगह को बल्कि इसके इर्द गिर्द की भी जगह को हमने बरकत दी। और बरकत के यहाँ पे दो माने हैं, एक तो हिस्सी बरकत है यानी जाहिरी तौर पे कि वहां की जमीन इतनी फर्टाइल है, इतनी जरखेज है, वहां पे बहुत प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, वहां बागात हैं, वहां के फल उनका जायका जबरदस्त है, फल फूल बहुत खूबसूरत, ग्रीनरी बहुत है, तो हमने बरकत दी इस जगह को। तो ये एक जाहिरी बरकत है और एक रूहानी भी बरकत है, और वो बरकत ये कि बेशुमार अंबिया यहीं पैदा हुए, यहीं पे उन्होंने तबलीग की, यहीं पे वो दफन है। और ये सिर्फ पैलेस्टाइन का एरिया नहीं, इसमें सीरिया, फलस्तीन, ये जो इसराइल का एरिया है, जो लेबनान है, जॉर्डन है, ये सारा एरिया इसमें शामिल है। इस जगह पर अल्लाह ताला ने अंबिया को जमा किया। और हुआ क्या था, बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज वाली रात काबतुल्ला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आपके पास तीन फरिश्ते आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। उनमें से एक जो सबसे आगे था, उसने पूछा, ये इन सब में से कौन है? दरमियाने वाले ने जवाब दिया, ये इन सब में बेहतर है, सब में खैर वाले हैं सबसे ज्यादा। कहा फिर इनको ले चलो, बस इस रात तो इतना ही हुआ। फिर आपने उन्हें नहीं देखा। दूसरी रात फिर ये तीनों आए, उस वक्त भी आप सो रहे थे, लेकिन आपका सोना इस तरह था कि आंखें सोती थी, दिल जाग रहा होता था, और तमाम अंबिया की नींद इसी तरह की होती है। इस रात उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, आपको उठाकर जमजम के पास ले आए, उसके कुएं के पास, और आपका सीना गर्दन तक खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से चाक किया, और सीने और पेट की तमाम चीजें निकालकर अपने हाथ से जमजम के पानी से धोई। जब खूब पाक साफ कर चुके, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे हैं, नो एनेस्थीजिया, और ये सर्जरी हो रही है। जब खूब पाक साफ कर चुके, और किस पानी से किया, जमजम से, तो अब आप जब जमजम पिए ना, तो फिर हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तूने इस पानी के साथ ही उनके दिल को साफ कर दिया था, जो पहले से ही साफ था, लेकिन और भी उनका सीना मुबारक चाक करके और अंदर से चीजें निकाल के दिल को पाक साफ किया गया। अल्लाह हमारे दिलों को भी इसी तरह पाक साफ कर दे। इसी पानी से पाक किया था ना, जन्नत का पानी नहीं लाए थे, चाहते तो वो भी ला सकते थे, लेकिन इससे जमजम की आपको पता चलती है कि कितनी फजीलत है। तो जब खूब पाक साफ कर चुके, तो आपके पास सोने की एक ट्रे लाई गई, जिसमें सोने का एक प्याला था जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इससे आपके सीने को और गले की रगों को भर दिया गया, फिर सीने को सी दिया गया। अल्लाह हु अकबर, सुबहान अल्लाह। आप देखें, अगर आप कहेंगे ना कि हर चीज को सिर्फ मैंने अकल के ऊपर रखना है और फिर सोचना है और फिर हम मैंने कहना है कि अच्छा मैं इसको मानूं कि नहीं मानूं, तो ये गैब पे ईमान नहीं लाना, ये गैब पे ईमान नहीं है। जब हमारा ईमान हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ हमें बताया गया कुरान में और सही हदीस में वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें कोई बात क्वेश्चनेबल नहीं है, और हम समयाना व अताना करते हैं। अब ये अगर आज आप ये कहें कि फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जो सफर कराया गया है ऊपर की तरफ, आप बताएं मुझे, आज आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो खास किस्म का लिबास पहना जाता है एयर प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, इसी तरह ऑक्सीजन वगैरह के टैंक्स रखे जाते हैं, क्योंकि जितनी आप बुलंदी पे जाते हैं, इवन हम किसी हिल स्टेशन वगैरह पे भी जाएं, तो वहां पे भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। पहाड़ के ऊपर चले जाए ना, ऑक्सीजन कम हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो सिर्फ पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, वो आसमानों पे ऊपर चले जाएं तो वहां पे ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं उन्होंने रखा? हम कहें नहीं जी, फिर कैसे कैसे हो सकता है, नहीं जी फिर ये क्या। इसी वजह से बाज लोगों ने जब अक्ल के ऊपर रखा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मानते ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जा सकते हैं, हम तो ये कहते हैं ख्वाब में गए थे। क्योंकि उनसे ये बताया नहीं जाता लोगों को कि हम किस तरह से आज भी साबित करें कि हमारे नबी इस तरह से सैर करके हैं। अगर काफरों के लिए उस वक्त ये एक फितना बना, एक आजमाइश बनी, तो आज भी ये एक आजमाइश है कि जो नहीं मानने वाले वो फिर क्वेश्चन उठाते, और फिर जो बेचारे बाज मुसलमान होते हैं और खुद भी वो अकल पे ही चीजों को परखते हैं, तो उनको साबित करने के लिए वो जल्दी से कह देते नहीं 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 ये असल में है, ऐसा नहीं है, वो तो बस ख्वाब का एक मामला था। जबकि हमें ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं, कोई शर्म नहीं कि हमारे नबी ने जिस्म समेत ये सफर किया था। हम नहीं डरते इस बात को कहने से कि वो लोग मुखालिफ हो जाएंगे, जी वो क्या कहेंगे, जी वो कहेंगे कि ये कैसी बातें करते हैं, ये क्रेजी हैं, ये हमें इसकी परवाह नहीं। और इसीलिए तो सुभान का लफ्ज आया है ना कि अल्लाह ही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम अपनी लॉजिक सोचते हैं, हम अपनी अकल करते हैं, हम सोचते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर गौर करते हैं, फिर हम कहते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह ताला सुभान है, वो पाक है इन सारी चीजों से के जो है ना, किसी के लिए कोई ऑक्सीजन चाहिए वो चाहे तो अपने बंदे को ऐसे ही ले जाए, चाहे तो वक्त को ही रोक दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से तैयार किया गया, जैसे कि हम कहें कि हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं ना जब, तो हम कितनी तैयारी करते हैं, एक शादी के लिए कितनी तैयारियां होती हैं, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी कैसे हो रही है ले जाने की, यानी कि आला सूट लेकर आए और ये लेकर आए और शूज ऐसे ले आए और ऐसे आपको संवारा गया, नहीं, इसका मतलब अल्लाह ताला के पास जब जा रहे हैं, उसके करीब हो रहे हैं, तो दिल की सफाई, अंदर की सफाई। बात समझ आई कि नहीं? बहुत डीप बात है ये कि अल्लाह ताला ने क्या देखना है, आपके हाल हुलिये, आपके हेयर स्टाइल, आपके ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड पर्स नहीं देखने, अल्लाह ताला ने आपके दिल को देखना है। वो दिल इस काबिल है कि अल्लाह ताला को दिखाया जाए। अल्लाहु अकबर, ये कितनी अजीब सैर है कि जिसके अंदर पेट को चाक किया जा रहा है, अंदर को धोया जा रहा है, ऑपरेशन तो बड़े लंबे होते हैं और उसमें हीलिंग में कितना लंबा टाइम लगता है, किसी के टांके लग जाए तो कितना लंबा टाइम लगता है उसको हील होने में, रिकवरी में, लेकिन ये कैसा ऑपरेशन है कि उसी वक्त दोबारा खड़े हो गए, चलने को तैयार है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसीलिए सुभान का लफ्ज आया, समझ आई ना? अब देखिए खुद ब खुद मुंह से निकला है ना सुभान अल्लाह, खुद ब खुद, क्योंकि वाकई ये अल्लाह तेरे लायक की शान ही है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्या इंतजाम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास बुर्राक लाया गया, बुर्राक का मतलब होता है बिजलियां, इसका मीनिंग है। तो वो गधे से ऊंचा था और खच्चर से नीचा था, जैसे सब समझ जाएंगे घोड़े की तरह चीज, एक वो एक एक कदम इतनी दूर रखता था जितनी दूर उसकी निगाह पहुंचती थी। आप सल्लम फरमाते मैं उस पर सवार हुआ, और जब सवार होने लगे थे तो उस वक्त भी वो थोड़ा सा बुराक जो था ना, उसकी उसकी लगाम भी थी, उसकी जीन भी थी, सवारी के बाद ना वो कुछ कुसमुसाया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कर रहा है, वल्लाही तुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपसे ज्यादा बुजुर्ग शख्स कोई सवार नहीं हुआ, इसका मतलब बुराक के ऊपर कोई और भी सवारी करता होगा, वल्लाहु आलम कौन, लेकिन कोई सवारी तो होगी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई आपसे ज्यादा बुजुर्ग शख्स तुझ पे सवार नहीं हुआ। तो बुराक पसीना पसीनी हो गया, पसीना आ गया उसको आपकी अजमत से, तो वो इतना तेज चलने वाली ये सवारी थी कि हद्दे निगाह पे वो एक कदम रखता था। आप सोचें हमारी हद्दे निगाह क्या है, अब यहां से आप देखें, आप बाहर देखें तो आपकी हद्दे निगाह आसमान है, राइट, आपको आसमान नजर आता है ना, तो समझ लें उसका नेक्स्ट स्टेप वहां हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर आप सवार होके जा रहे हैं, तो इब्ने जरीर में है कि बुराक ने जब जिब्राइल अलैहि सलाम की बात सुनी और वो फिर आपको सवार करके ले चला, तो इतनी दूर दूर जब वो कदम रख रहा था तो रास्ते में एक किनारे पर एक बुढ़िया को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ये कौन है, जवाब मिला आप चलें, फिर आपने चलते चलते देखा कोई रास्ते से अलग हो गया और आपको बुला रही है, वो कोई रास्ते से अलग हुई भी है और बुला रही है, फिर आप आगे बढ़े तो देखा अल्लाह की एक मखलूक है जो बुलंद आवाज से कह रही है अस्सलाम वालेका या अव्वल, अस्सलाम वालेका या आखिर, अस्सलाम वालेका या हाशिर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप जवाब दें, तो आपने उनके सलाम का जवाब दिया, फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी मरतबा, यहाँ तक कि आप बैतुल मक्तस पहुंच गए। ये कौन थी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि रास्ते के किनारे पे जिस बुढ़िया को आपने देखा तो वो दुनिया थी और उसकी उम्र अब सिर्फ इतनी सी रह गई जैसे इस बुढ़िया की उम्र, और जिसकी आवाज पर आप तवज्जो करने वाले थे वो अल्लाह का दुश्मन इबलीस था, और जिनके सलाम की आवाजें आपने सुनी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह, यानी इनकी आवाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में सुनी थी। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे देखा कि एक जगह बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये खुशबू कैसी है? तो जवाब मिला, फिरौन की जो बेटी की मशाता थी, ब्यूटिशन थी, वो और उसकी औलाद के कब्र की खुशबू है। और आपको ये वाकया तो पता ही होगा कि किस तरह से फिरौन ने उनको जिंदा ही कैसे खौलते हुए तेल में डलवा दिया था, उसको भी और उसके बच्चों को भी, और उसने कहा था कि मेरे और मेरे बच्चों को एक ही जगह पे दफना दिया जाए। तो ये फिर हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सीन्स देखे जब आप जा रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया गया, और इसके अलावा फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, अब आगे पीछे बहुत सारी रिवायात हैं इसके अंदर, लेकिन एक रिवायत में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, जैसे अब आप देखेंगे आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपके सामने कुछ पेश किया जाता है ना, तो आपके सामने पानी, शराब और दूध पेश की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत का राज पा लिया, अगर आप पानी का बर्तन पी लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती, और अगर आप शराब पी लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती।